पाठ 15 अध्याय 11 जारी।
हमने पिछली बार लैव्य व्यवस्था अध्याय 11 शुरू किया था और हम इसे इस सप्ताह जारी रखेंगे। अध्याय 11 का अध्ययन स्वच्छ बनाम अशुद्ध और पवित्र बनाम सामान्य के विषयों पर केंद्रित है। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि यह केवल यहूदी धर्म ही है जहां इन शब्दों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और जहां आम धार्मिक व्यक्ति को उनके अर्थ के बारे में कम से कम कुछ जानकारी है। यदि आप आधुनिक समय के विश्वासियों के सामने इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपको लोग घूरेंगे और कुछ लोग जोर से आश्चर्य करेंगे कि क्या ये शब्द पवित्र के अलावा बाइबल में भी हैं।
लेकिन यह विषय यहूदी ईसाई धर्म के लिए केंद्रीय है और समझ की कमी इस युग में चर्च की कमजोरी के लिए भी उतनी ही केंद्रीय है। आइए देखें कि क्या हम आज इस मामले में थोड़ा और गहराई से नहीं जा सकते हैं और शायद इन प्रमुख ईश्वर सिद्धांतों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। अंतिम मामला जिस पर हमने पिछली बैठक में चर्चा की थी वह एक मृत पशु जैसे कि एक सामान्य चूहा के किसी वस्तु जैसे कि एक बर्तन या कटोरा के संपर्क में आने से संबंधित था और इस प्रकार उस वस्तु पर मृत्यु की अशुद्धता संचारित हो गई। तो सवाल ये उठता है कि अब जब कोई चीज अशुद्ध मृत जानवर से प्रदूषित हो गई है तो उस वस्तु का क्या किया जाना चाहिए। अगले कुछ पद हमें इसका उत्तर देते हैं। तो आइए हम अपनी दिशा जानने के लिए लैव्य व्यवस्था अध्याय 11 के अंतिम आधे भाग को फिर से पढ़ें।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 11 का 29 को पुनः पढ़ें अंत तक। अब अधिकांश बाइबल अनुवादों में पद 32 का अंतिम भाग कुछ इस तरह लिखा है कि कोई भी वस्तु या कोई भी बर्तन जो लकड़ी या चमड़े या कपड़ों से बना हो, कुछ ऐसा ही। लेकिन यह वास्तव में सही नहीं है। मूल इब्रानी में जिसे आमतौर पर गलत तरीके से वस्तु या बर्तन के रूप में अनुवादित किया जाता है वह शब्द बर्तन है। इब्रानी शब्द केली विशेष रूप से किसी प्रकार के पात्र को संदर्भित करता है जैसे कि एक कटोरा या लकड़ी से बना पानी का घड़ा या छमरे से बनी किसी चीज के संदर्भ में जैसे कि एक मदिरा की थैली। यहां समझने का विचार यह है कि बर्तन किसी छिद्रपूर्ण चीज से बना होता है और इसलिए यह उस चीज को सोख लेता है जिससे यह भरा जाता है। ऐसे बर्तन को साफ करने का उपाय यह है कि इसे पानी में डुबोया जा सकता है यानी इसे पानी से धोया जा सकता है सूर्यास्त तक चलने वाले अनुष्ठानिक धुलाई के बाद। वर्तमान दिन के अंत और अगले दिन की शुरुआत तक बर्तन को एक बार फिर अनुष्ठानिक रूप से साफ माना जाता था।
हालांकि जैसा कि हमें पद 33 में बताया गया है अगर कोई मरा हुआ जानवर मिट्टी के बर्तन में गिरता है मिट्टी के बर्तन तो उसे नष्ट कर देना चाहिए और फिर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही बात मिट्टी के बर्तन या चूल्हे पर भी लागू होती है। जो अपवित्र हो सकता है उसे तोड़ देना चाहिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तव में ऐसा क्यों है विद्वानों को इस बारे में निश्चितता नहीं है क्योंकि इस समय कनान देश में मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेजिंग और आग लगाना एक झांत प्रक्रिया थी और जब इसे चमकाया गया तो छिद्र और अवशोषण की समस्या हल हो गई। फिर भी इस आयत में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि किसी को एक जलाए गए बर्तन और एक बिना जलाए गए बर्तन के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। सदियों से विकसित यहूदी धर्म के शुद्धता नियमों की विस्तृतता चौंका देने वाली है। मिशनाह में केलिम नामक एक संपूर्ण ग्रंथ इस विषय को समर्पित है। ऋषियों के दिमाग की एक कुंजी यह थी कि क्या कोई मृत प्राणी किसी बर्तन पर या बर्तन में गिरा है। अधिकांश समय जब कोई प्राणी बर्तन पर गिरता था तो इसका मतलब था कि बर्तन को धोया जा सकता था लेकिन जब वह उस बर्तन में गिरता था तो अधिकांश समय बर्तन और उसकी सामग्री को नष्ट करना पड़ता था। इसलिए बर्तन पर ढक्कन लगाना मृत प्राणी के संपर्क की सबसे गंभीर और महंगी घटनाओं के खिलाफ एक अच्छा बचाव था। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है न केवल बर्तन बल्कि उसमें मौजूद हर चीज भी अशुद्ध हो गई जब मृत जानवर उसमें गिर गया। हालांकि इसके साथ एक चेतावनी भी है बर्तन के अंदर नमी मौजूद होनी चाहिए यानी अगर पात्र के अंदर सूखा अनाज था तो
तो बस इतना ही करना था कि मृत जानवर को बाहर निकाल दिया जाए, बर्तन को साफ किया जाए और सूखे अनाज को खाने के लिए स्वीकार्य माना जाए, हालांकि अगर अनाज में पानी मिला हुआ था। उदाहरण के लिए यह आटा था जिसे फूलने के लिए छोड़ दिया गया था, तो अनाज को नष्ट करना होगा। ऐसा लगता है कि प्रदूषण फैलाने की कुंजी पानी है, या अगर यह पानी का बर्तन था या शराब का बर्तन था तो सारा तरल अब अशुद्ध हो गया था और उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। पद 36 हमें बताता है कि यदि कोई मृत पशु किसी जल कुएं, कुंड या जल स्रोत में गिरता है तो कुएं, कुंड या स्रोत में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। हालांकि शव को हटाने का काम जिस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को सौंपा गया है वह अशुद्ध हो जाता है। यहां पानी के बारे में सिद्धांत है। जब यह धरती से झुरा होता है, कुंड या झील या धारा या मिखवा में, तो पानी अशुद्ध नहीं हो सकता। दूसरी ओर बर्तन या बाल्टी जैसे पोर्टेबल बर्तन में डाला गया पानी अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि यह अब स्वाभाविक रूप से धरती से झुरा नहीं है। यह खुद को यह समझाने के लिए उदाहरण देता है कि ऐसा क्यों है कि एक अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध व्यक्ति या वस्तु को पानी में डुबोकर साफ किया जा सकता है, बशर्ते कि पानी धरती से जुड़ा हो। धरती से जुड़ा पानी अशुद्धता को अनुबंधित नहीं कर सकता, यह केवल अशुद्ध को शुद्धता प्रदान कर सकता है। इसे हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपको इब्रानियों की अनुष्ठान प्रक्रिया के बारे में कई चीजों को समझने में मदद करेगा, और यहां तक कि कुछ कारणों से भी कि यीशु ने जो किया वह क्यों किया।
पद 38 हमें बताता है कि सूखा बीज फसल बोने के लिए दूषित नहीं होता यदि उस पर कोई मृत पशु गिर जाए, तथापि यदि बीज किसी प्रकार गीला हो गया हो तो वह बीज अशुद्ध है और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। पद 39 में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, क्योंकि अब स्वच्छ जानवरों से निपटा जाता है और विचार यह है कि मृत्यु सामान्य रूप से स्वच्छ चीज को भी अशुद्ध बना देती है। इसलिए उदाहरण के लिए यदि किसी कारण से बकरी, एक स्वच्छ जानवर, मर जाती है तो जो व्यक्ति उसके शव को छूता है वह सूर्यास्त तक अशुद्ध रहता है। कोई व्यक्ति जो इस पूर्व में स्वच्छ लेकिन अब मृत जानवर को खाता है वह भी अशुद्ध हो जाता है और उसे अपने कपड़े धोने चाहिए। यही बात उस व्यक्ति पर भी लागू होती है जो केवल मृत जानवर को ले जाता है। बेशक जानवर की मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण है। यदि जानवर को बलि के लिए या केवल भोजन के लिए मारा गया था तो यह ठीक है, कोई अशुद्धता नहीं होती है। यह तब होता है जब जानवर बीमारी से मरता है या किसी शिकारी द्वारा मारा जाता है या दुर्घटनावश मर जाता है, जिससे वह संक्रमित होता है और अशुद्धता फैलाता है। पद 41 से 44 में फिर से शेकेट्स की अवधारणा को संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है घृणा, और झुंड में रहने वाले किसी भी जीवित प्राणी को खाने के खिलाफ निर्देश। इब्रानी में शरत को दोहराया गया है। जाहिर है कि यह बहुत गंभीर मामला है जिसे कुछ ही पदों में दोहराया जाएगा। सांप, मेंढक, छिपकली, चूहा, चूहे, घरियाल, मगरमच्छ, कोई भी ऐसा जानवर जो अपने पेट के बल रेंगता हो, चारों पैरों पर रेंगता हो और चारों तरफ उछलता हो वर्जित है। क्यों? क्योंकि यहोवा के अपने अच्छे कारणों से ये चीजें उसके लिए घृणित हैं, और जो व्यक्ति अवज्ञा करता है और इन चीजों को खाता है वह परमेश्वर के लिए घृणित हो जाता है, कम से कम अस्थाई रूप से। ऐसा कुछ नहीं जिसे कोई भी इब्रानी या निश्चित रूप से हम में से कोई भी कभी भी लेबल नहीं करना चाहेगा। और पद 45 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लिए नियमों का यह कठोर सेट क्यों स्थापित किया है, क्योंकि चूंकि वह पवित्र है इसलिए उसके लोगों को भी पवित्र होना चाहिए। केवल कुछ या कोई पवित्र ही उसकी पूर्ण और सर्वोपरि पवित्रता की उपस्थिति में हो सकता है। देखिए, यह उत्पत्ति की अवधारणा पर वापस जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर पवित्र है इसलिए मनुष्य को भी पवित्र होना चाहिए। एक कुत्ता या एक चिंपांजी या एक डॉल्फिन जितना बुद्धिमान हो सकता है, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो न तो शास्त्रीय रूप से और न ही वैज्ञानिक रूप से यह दर्शाता है कि मनुष्य को छोड़कर किसी भी जीवित प्राणी में परमेश्वर और आध्यात्मिक दुनिया को समझने की क्षमता है। यह सभी अन्य जीवित प्राणियों से ऊपर मनुष्य के लिए अद्वितीय है, जिनमें से सभी को यहोवा बहुत महत्व देता है, और यह एक कारण है कि मनुष्य को परमेश्वर द्वारा अन्य जीवित प्राणियों को मारने और खाने की अनुमति है, लेकिन इन जीवित प्राणियों को परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को मारने और खाने की अनुमति नहीं है। बाइबल किसी भी जानवर को जिसने किसी भी कारण से किसी मनुष्य को मार डाला है, मौत की सजा देती है। यह अध्याय एक उपसंहार के साथ समाप्त होता है, जो उस समय उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट था। जिस तरह अध्याय की शुरुआत इज़राइल को यह बताकर हुई थी कि किस पर चर्चा की जाएगी, उसी तरह अब यह न्यायोचित बोले गए नियमों और आदेशों के उद्देश्य को दोहराते हुए समाप्त होता है, और यह है कि इज़राइली लोग स्वच्छ और निषिद्ध खाद्य पदार्थों के बीच अंतर कर सकें, या जैसा कि हमने इब्रानी में सीखा, तामी और ताहोर के बीच। इसमें एक बाइबल की अवधारणा भी शामिल है, जो उत्पत्ति की पुस्तक के बाद से काफी हद तक पृष्ठभूमि में रही है, विभाजन, चुनाव और अलगाव की अवधारणा। जो लोग उत्पत्ति के लिए यहां थे, वे शायद उस सिद्धांत को याद रखें, हालांकि ये काफी समय हो गया है। संक्षेप में, शुरुआत में परमेश्वर ने विभाजन, चुनाव और अलगाव की क्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरा। उसने सूखी जमीन को पानी से अलग किया और उन्हें अलग किया। उसने प्रकाश को अंधकार से अलग किया, बुराई से अच्छाई के अर्थ में, और उन्हें अलग किया। उसने दिन को रात से अलग किया और उन्हें अलग किया। उसने हवा में मौजूद जल वाष्प को समुद्र बनाने वाले संघनित पानी से अलग किया और उन्हें अलग किया। उसने रर्थुओं को नामित करने और विभाजित करने के लिए सितारों की तरह आकाश में छोटी छोटी ज्योतियां स्थापित की, और उसने मनुष्य को बनाया और उसे विभाजित किया और उसे अन्य सभी जीवित प्राणियों से अलग किया, ठीक उसी तरह जैसे अंततः वह इज़राइल को विभाजित करेगा, चुनेगा और अलग करेगा, और पृथ्वी पर अन्य सभी राष्ट्रों से अलग करेगा। तो यही प्रक्रिया उन खाद्य पदार्थों को विभाजित करने, चुनने और अलग करने में काम आती है जिन्हें मनुष्य खा सकता है, और उन खाद्य पदार्थों को जिन्हें वह नहीं खा सकता है। वास्तव में, हालांकि पद 47 का सामान्य अनुवाद कुछ इस तरह कहता है, खाए जा सकने वाले जीवित प्राणियों के बीच अंतर करने के लिए, यह अधिक शाब्दिक रूप से कहता है, ताकि शुद्ध और अशुद्ध के बीच अलगाव हो सके। अब जब हम तोरह और लैव्य व्यवस्था की अवधारणाओं से अधिक परिचित हो रहे हैं, तो हम बीच में अंतर करना और अलग करना शब्दों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो राजनीतिक शुद्धता और सभी चीजों के लिए सहिष्णुता की मांग करती है, अंतर करना, अलग करने की तुलना में भेद करना एक बहुत ही हल्की अवधारणा है, या भेद करना विभाजन और अलगाव से पहले प्रारंभिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी मूल इब्रानी बाइबल में इसे भेद करना कहा गया है, इस बात पर जोर देते हुए कि सिर्फ अंतर जानना, जो कि भेद करना शब्द का विचार है, उस ज्ञान पर काम करने से बिल्कुल अलग है जो कि अलग करने का विचार है। हमें सिर्फ जानना, अंतर करना, अच्छाई को बुराई से अलग करना या सही को गलत से अलग करना नहीं है, हमें सक्रिय रूप से दोनों को अलग करना है। हमें सही और अच्छाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहना है और गलत और बुराई से दूर रहना है, और यह बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता की जरूरत है, लेकिन यही तो उन लोगों से अपेक्षित है जो ईश्वर के नजदीक हैं, विश्वासी हैं हमसे।
लैव्य व्यवस्था 11 अनुलेख।
मैं आज आपके लिए कुछ पहेली के टुकड़े जोड़ना शुरू करने जा रहा हूं, ऐसे टुकड़े जो उम्मीद है कि पाप और अशुद्धता, पवित्रता और अशुद्धता के बीच संबंधों के बारे में आपके कई सवालों को समझाने में मदद कर सकते हैं। इस पाठ के दौरान रिश्तों शब्द को ध्यान में रखें, क्योंकि यह आपके लिए एक बिल्कुल नए तरीके से समझने की कुंजी होगी कि यहोवा बाइबल के माध्यम से हमसे कैसे बात करता है। लेकिन हमें जहां जाना है, वहां पहुंचने के लिए मुझे भाषा और सोचने की शैलियों की चर्चा के साथ इसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए असली बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। बाइबल के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा विवादित बहस भाषा से जुड़ी है। यह वर्तमान में व्यापक रूप से प्रचलित मान्यता है कि पुराना नियम मूल रूप से इब्रानी में लिखा गया था, जबकि नया नियम सबसे पहले ग्रीक में लिखा गया था। ऐसे विद्वान हैं जो निश्चित हैं कि नए नियम के कुछ हिस्से मूल रूप से इब्रानी या अरामी में लिखे गए थे, लेकिन लगभग तुरंत ही उनका ग्रीक में अनुवाद किया गया और उस भाषा में व्यापक रूप से वितरित किया गया। हम आज उस तर्क पर गहराई से विचार नहीं करेंगे, बल्कि हम बस इस धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे कि इब्रानी पुराना नियम भाषा थी और ग्रीक नई, क्योंकि अब तक प्रत्येक नियम के लिए मिली सबसे पुरानी पांडुलिपियां वास्तव में पुराना नियम के लिए इब्रानी और नया नियम के लिए ग्रीक हैं। हालांकि इससे एक और महत्वपूर्ण धारणा नहीं बदलती है, और यह एक बड़ी धारणा है कि इब्रानियों ने पूरी बाइबल लिखी, पुराना नियम और नया नियम। संभवतः लूका अपवाद था, फिर भी यह भी बहस का विषय है। ऐसा हो सकता है कि भले ही लूका इब्रानी न हो, लेकिन वह बाइबल के रिकॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है, और वास्तव में लूका ने जो किया वह इब्रानियों से एक व्यक्तिगत विवरण लिखकर चिपकाना था जिसमें उसके विषय पर जानकारी थी। यह कि अन्य सभी बाइबल लेखक इब्रानी थे, इस बात को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिली है।
ऐसा कहने से बाइबल पूरी तरह से इब्रानी दस्तावेज बन जाती है। क्या बाइबल लेखकों की विशिष्ट संस्कृति इब्रानी वास्तव में मायने रखती है? निश्चित रूप से रखती है। समाज शास्त्र, नृविज्ञान, भाषा विज्ञान और साधारण अवलोकन में यह माना जाता है कि भाषा अपनी संस्कृति का प्रतिबिंब होती है और कोई भी संस्कृति अपनी भाषा में समाहित होती है। जब बाबेल के टॉवर पर यहोवा ने दुनिया की एक आम भाषा को कई भाषाओं में विभाजित और अलग किया, तो इसका परिणाम सिर्फ इतना नहीं था कि अचानक लोगों का एक समूह आपस में संवाद करने का लगभग कोई तरीका नहीं बचा। जो लोग अभी भी आपस में संवाद कर सकते थे, संभवतः विस्तारित परिवार और गोत्र, एक दूसरे से चिपके रहे और जरूरत के हिसाब से समूह बनाए, और फिर समूह अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए, जिससे पूरी दुनिया में फैलने और बसने का प्रभु का उद्देश्य पूरा हुआ। हालांकि अनिवार्य रूप से इनमें से प्रत्येक भाषा समूह जो अब प्रभावी रूप से विभाजित अलग और भाषा द्वारा अन्य समूहों से अलग हो गए ने जीवन और मृत्यु, नैतिकता और आखार, कानून और न्याय, प्राथमिकताओं और विचारों इत्यादि की अपनी अनूठी अवधारणाएं और विचार विकसित की। वे अपने अलग अलग लोगों के समूह, राष्ट्र और संस्कृतियों में विकसित हुए, प्रत्येक की अपनी भाषा, रीति रिवाज और मूल्य है। इसलिए भाषा और संस्कृति अमिट रूप से जुड़ी हुई है। प्रत्येक अनूठी संस्कृति ने दर्शन और अवधारणाओं का एक समूह विकसित किया है जिसके आधार पर वह काम करती है, और इनमें से कई उस विशेष संस्कृति के लिए पूरी तरह से अद्वितीय हैं। इसके अलावा उस संस्कृति की मूल भाषा ने ऐसे शब्द विकसित किए जो केवल उनकी भाषा में ही पाए जाते हैं, जो उनकी कुछ अनूठी सांस्कृतिक अवधारणाओं को मूर्त रूप देते हैं। इसलिए कुछ संस्कृतियों में ऐसे विचार और अवधारणाएं होती हैं जिनका अन्य संस्कृतियों या भाषाओं में कोई समानांतर नहीं होता।
मुद्दा यह है कि भाषा और वह संस्कृति जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है में अक्सर ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिन्हें उस संस्कृति के बाहर किसी को बताना बहुत कठिन होता है, क्योंकि क उस विशेष अवधारणा को व्यक्त करने के लिए बाहरी संस्कृतियों में कोई शब्द नहीं गढ़े गए हैं, और ख ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संभव है कि कुछ अवधारणाएं केवल उसी एक संस्कृति में विद्यमान हों, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य भाषाओं और संस्कृतियों में उनके लिए कोई शब्द नहीं होंगे।
मेरी पत्नी की एक आजीवन मित्र है जो मैक्सिकन आस्तिक है। वह बताती है कि मैक्सिकन स्पेनिश बोली में प्रेम शब्द के लिए कई शब्द हैं, और इनमें से प्रत्येक शब्द प्रेम के थोड़े अलग पहलू को व्यक्त करता है। समस्या यह है कि इनमें से अधिकांश मैक्सिकन शब्दों का कोई सीधा अंग्रेजी समकक्ष नहीं है, क्योंकि प्रेम के वे विशेष पहलू अमेरिकियों के लिए विदेशी हैं, वे केवल मैक्सिकन संस्कृति में मौजूद हैं। इसलिए मैक्सिकन संस्कृति के बाहर किसी व्यक्ति को उन विचारों को संप्रेषित करना सबसे कठिन, यदि असंभव नहीं है तो है। बाइबल को समझने की कोशिश करते समय हमारे सामने यही समस्या है। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन इब्रानी लोगों के लिए उन शब्दों का क्या मतलब था जिन्होंने उन्हें लिखा था, बजाय इसके कि वे केवल एक अलग भाषा में अनुवादित होने और एक अलग संस्कृति पर लागू होने पर क्या कहते हैं।
जटिल है ना, लेकिन और भी बहुत कुछ है। बाइबल के समय में इब्रानी संस्कृति भी एक खास तरह की सोच के इर्द गिर्द घूमती थी, एक तरीका जो उस युग के लिए काफी आम था। जिस तरह से जानकारी को मानसिक रूप से संसाधित किया जाता था वह स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा में परिलक्षित होता था, इब्रानी। अब सभी लोगों में से मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह समझना सबसे कठिन चुनौती रही है कि सोचने के एक से ज्यादा तरीके मौजूद हैं। मेरा तरीका और मेरी पत्नी इस पर बहुत बड़ी सहमति दे सकती है, लेकिन सोचने के तरीके से मेरा मतलब यह नहीं है कि कैसे मनुष्य अक्सर विभिन्न मामलों पर अलग अलग जोर देते हैं या इस बात पर असहमत होते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है या क्या प्राथमिकता है आदि, बल्कि यह है कि सोचने का तरीका पूरी तरह से अलग है। निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं यह अलग है। आज दुनिया का अधिकांश हिस्सा, निश्चित रूप से पश्चिमी दुनिया, सोचने की एक ऐसी शैली का उपयोग करती है जो 450 ईसा पूर्व के आसपास यूनानियों द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने से पहले मौजूद नहीं थी, और यह सूचना को संसाधित करने और निष्कर्ष निकालने की ग्रीक शैली ही है जिसका उपयोग आज दुनिया का बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से विकसित दुनिया, करती है, और यह उस समय से पहले की स्थिति से बहुत अलग है। इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति और बाइबल के सभी अनुवादक जो इसके सबसे पहले अनुवाद 250 ईसा पूर्व से इब्रानी से विदेशी भाषा यूनानी में वापस जाते हैं, उस तरह से सोचते हैं जिसे विद्वान तर्क संगत तार्किक शैली कहते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन बाइबल के इब्रानी मूसा से पहले से लेकर यीशु और प्रेरितों के समय तक उस तरह से नहीं सोचते थे। हालांकि यीशु के समय तक उस तरह की कुछ विचार शैली डायस्पोरा के यहूदियों में घुस गई थी। वे तर्कसंगत तार्किक शैली में नहीं सोचते थे, बल्कि वे उस तरह की विचार शैली में काम करते थे जिसे विद्वान सादृश्यात्मक कहते हैं। हमारे लिए इसका मतलब ये है कि अक्सर बाइबल के इब्रानी लेखकों का मतलब अक्सर ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी जैसी तर्कसंगत तार्किक आधारित भाषाओं के माध्यम से सादृश्यात्मक इब्रानी विचार को आधुनिक पश्चिमी विचार शैली में अनुवाद करने की कोशिश की कठिनाई से पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाता है। मैं बाइबल के लेखकों के अनुरूप विचार और बाइबल व्याख्याकारों और हम में से प्रत्येक के तर्कसंगत तर्कपूर्ण विचार के बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझाने जा रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे गहरी सांस लेने, कोबवे झारने और ध्यान से सुनने के लिए कहना चाहूंगा। आखिरकार बाइबल के लेखकों के सोचने के तरीके को पुनः प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ताकि हम समझ सकें कि उन्होंने जो कहा उसका वास्तव में क्या मतलब था। सबसे पहले आइए तर्कसंगत तार्किक सोच को परिभाषित करें। यह सोचने की वह शैली है जिसका हम सभी अनजाने में उपयोग करते हैं क्योंकि हम इसके साथ बड़े हुए हैं। यह असंभव है कि हम में से कोई भी कभी भी सोचने की वैकल्पिक शैली के संपर्क में आया हो और शायद हम इसे पहचान भी न पाते कि यह क्या है, भले ही हमने इसे देखा हो। हमारी आधुनिक पश्चिमी संस्कृति में और दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों में सब कुछ तर्कसंगत तार्किक सोच को दर्शाता है और 2000 वर्षों से ऐसा ही है। मैं सबसे अधिक इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ संस्कृतियां जैसे कि चीनी और अन्य एशियाई पूर्वी लोग अभी भी अपनी संस्कृति में काफी हद तक अनुरूप विचार को शामिल करते हैं। चीनी लोगों के लिए अक्सर कही जाने वाली एक प्रसिद्ध कहावत है कि वे घूरा हैं, और यह आमतौर पर एक व्यवसायी या राजनयिक द्वारा इन पूर्वी लोगों से संवाद करने और उनसे निपटने की कोशिश में निराशा के कारण कही जाती है। इसका मतलब यह है कि हम इन अजीब लोगों को समझ नहीं पाते वे कैसे सोचते हैं, यह हमारे लिए एक रहस्य है। मुद्दा यह है कि तर्कसंगत तार्किक विचार किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं है, न ही तर्कसंगत तार्किक विचार अनिवार्य रूप से अनुरूप विचार से बेहतर और अधिक उन्नत है, यह बस अलग है। वास्तव में व्यावहारिक रूप से विपरीत है, और यह ऐसा कुछ नहीं है
जिसके द्वारा हमने एक या दूसरी शैली में सोचने का सचेत निर्णय लिया हो। विचार की तर्कसंगत तार्किक शैली हमारे आसपास के सभी लोगों में मौजूद है और हमारी संस्कृति में सिखाई जाती है।
तर्कसंगत तार्किक विचार विज्ञान में अंतर्निहित है। तथा कथित वैज्ञानिक पद्धति जिसे हमें ग्रेड स्कूल में पढ़ाया गया था, वह आवश्यक रूप से तर्कसंगत तार्किक विचार का उपयोग करती है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तर्कसंगत तार्किक विचार तर्क पर निर्भर करता है और कारण और प्रभाव के दर्शन पर काम करता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो परिणाम यह होता है। यह व्यवस्थित विचार है, यानी यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जो कुछ भी मौजूद है वह एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है और हर प्रणाली इस तरह से संरचित है कि हम इसे छोटे छोटे उप प्रणालियों में तोड़ सकते हैं और इन उप प्रणालियों की अलग अलग जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे काम करती हैं।
उदाहरण के लिए विज्ञान की भाषा में कार एक सिस्टम है। ये कई उप प्रणालियों से मिलकर बना होता है, जैसे मोटर, ट्रांसमिशन, बॉडी, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सीटिंग, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इत्यादि। एक इंजन अपने आप में कार के बाहर पूरी तरह से विकसित और जांचा जा सकता है। वास्तव में वही इंजन और उसके विकास को निर्देशित करने वाले सिद्धांत किसी भी संख्या में अनुप्रयोगों और प्रणालियों में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि नाव और ट्रक और हवाई जहाज और बिजली जनरेटर। अकेले कई उप प्रणालियों में से प्रत्येक पूर्ण और संपूर्ण है, प्रत्येक स्वयंनिहित है और एक कार्य करता है। लेकिन जब हम इनमें से कई उप प्रणालियों को एक साथ जोड़ते हैं तो बस हमारे पास एक ऑटोमोबाइल हो सकता है।
एक और उदाहरण के रूप में पश्चिमी चिकित्सा उसी तर्कसंगत तार्किक दर्शन के तहत काम करती है। एक मानव शरीर को पारंपरिक रूप से एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें कई उप प्रणालियां शामिल हैं, जैसे हमारा कंकाल ढांचा, हमारा मस्तिष्क, हमारे फेफड़े, हमारा पाचन तंत्र, हमारी आंखें, कान, नाक और गला आदि। अगर हमें पेट की कोई समस्या है तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो पेट के उपतंत्र के विशेषज्ञ हैं। अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस पर विशेषज्ञ है। अगर हमें देखने में समस्या है तो हम किसी नेत्र चिकित्सक के पास जाएं, इत्यादि। यह सब ठीक है, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा आम तौर पर आत्मा को मनुष्य के एक अलग हिस्से और उपप्रणाली के रूप में नहीं देखती है, बल्कि आत्मा बस हमारे मस्तिष्क के कार्य का हिस्सा है। आत्मा एक विश्वास है। तर्कसंगत तार्किक रूप से यह वास्तव में हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके का परिणाम है। तर्कसंगत तार्किक रूप से मनुष्य का कोई पहचान योग्य हिस्सा नहीं है जिसे अलग करके जांचा या मरम्मत किया जा सके, जिसे आत्मा कहा जाता है। मैं आत्मा की अवधारणा में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा में इसका कोई अर्थ नहीं है।
तर्कसंगत तार्किक विचार को आम तौर पर दो मुख्य प्रकार के तर्क में विभाजित किया जाता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कठोर ठंडे तथ्यों की एक श्रृंखला को संयोजित करने पर काम करता है। तथ्य एक है, सभी कुत्तों के चार पैर होते हैं।
तथ्य दो, रोवर एक कुत्ता है।
निष्कर्ष, रोवर के चार पैर हैं, काफी सरल। लेकिन आगमनात्मक तर्क गणितीय निश्चितता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है जैसा कि निगमनात्मक तर्क करता है, बल्कि आगमनात्मक तर्क तब होता है जब हम जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे अपने जीवन के अनुभवों और अपने ज्ञान के साथ जोड़ते हैं ताकि जो सच लगता है उसके बारे में अवलोकन किया जा सके। आगमनात्मक तर्क का एक उदाहरण यहां दिया गया है। अवलोकन एक, जॉन आज सुबह कक्षा में देर से आया।
अवलोकन दो, जॉन के बाल अस्त व्यस्त थे। अनुभव, जॉन के बाल आमतौर पर साफ और कंघी किए हुए होते हैं।
निष्कर्ष, जॉन अवश्य ही अधिक सो गया होगा।
जब हम लोगों का निरीक्षण करते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं तो हम अपने निष्कर्ष निकालने में आगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं। फिर भी चाहे आगमनात्मक हो या निगमनात्मक, यह सब अभी भी तर्कसंगत तार्किक सोच पर आधारित है। तर्कसंगत तार्किक सोच रैखिक और विकासवादी होती है, ए बी की ओर ले जाती है और बी सी की ओर ले जाती है। तर्कसंगत तार्किक सोच हमेशा पूछती है क्यों। तर्कसंगत तार्किक सोच कहती है कि इतिहास एक सीधी रेखा है जो अतीत में किसी अपरिभाषित बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और यह कि इतिहास दोहराता नहीं है और अतीत भविष्य का पूर्वानुमान नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पैटर्न मौजूद नहीं है।
तर्कसंगत तार्किक सोच के बारे में बात यह है कि यह शून्य में सबसे अच्छा काम करती है, अन्य चीजों के साथ संबंधों और कनेक्शनों से दूर, जो समान हो सकती हैं या जो पहले घटित हो चुकी हैं। सत्य और प्रासंगिकता व्यावहारिक है, अर्थात तर्कसंगत तार्किक सोच शैली में कुछ क्यों हुआ, इसका प्रश्न इस बात से परिभाषित होता है कि कुछ कैसे हुआ और वास्तव में क्या हुआ। यह प्रासंगिक जानकारी के लिए एक बहुत ही संकीर्ण खोज है, क्योंकि यह एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट घटना से संबंधित है। अतीत और भविष्य का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, वर्तमान स्थिति से भी इसका कोई संबंध नहीं है। मैंने अभी जो आपको बताया है उसे बाइबल ग्रीक सोच कहती है। यह हेलेनिस्टों की सोचने की शैली है, जो निश्चित रूप से यहूदियों के साथ मतभेद रखते थे, और कुछ ही मिनटों में मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि क्यों उस सोचने की शैली को यह नहीं पता कि इब्रानी सोच की शैली अनुरूप सोच के साथ क्या करना है। इससे पहले कि मैं सादृश्यात्मक विचार, बाइबल के लेखकों द्वारा इस्तेमाल किए गए विचारों के प्रकार को समझाने की कोशिश करूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि तर्कसंगत तार्किक विचार शैली में कुछ भी गलत या अधार्मिक या दोषपूर्ण नहीं है, बशर्ते हम स्वीकार करें कि यह सोचने की एकमात्र शैली नहीं है और इसकी अंतर्निहित सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, यहोवा द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड आवश्यक रूप से तर्कसंगत तार्किक तरीके से काम नहीं करता है, चाहे विद्वान और वैज्ञानिक चौकोर खूंटे को गोल छेद में ठोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। तर्कसंगत तार्किक सोच अनिवार्य रूप से मनुष्य केंद्रित होती है। यह पूरी तरह से हमारे ब्रह्मांड के अवलोकनीय चार आयामों पर निर्भर करता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। मान्यता यह है कि केवल वे चीजें ही वास्तविक हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से देखा और परखा जा सकता है। यह खोज करने और फिर उन खोजों का उपयोग निर्णय और निर्णय लेने के लिए करने के लिए मानव मन की शक्ति पर निर्भर करता है। जो तर्क और कारण से साबित नहीं किया जा सकता है वह स्वचालित रूप से अमान्य है।
अब सादृश्यात्मक सोच एक पूरी तरह से अलग चीज है। यह स्थापित पैटर्न और मॉडल के आधार पर काम करती है। सादृश्यात्मक सोच उन आम आधारभूत सत्यों की खोज करती है और उन्हें पहचानती है जो समान चीजों के बीच साझा किए जाते हैं, भले ही वे विशेष समान चीजें पूरी तरह से एक जैसी ना हो। उदाहरण के लिए, एक हवाई जहाज के पंखों का संचालन एक हद तक एक पक्षी या उड़ने वाले कीट के पंखों के संचालन जैसा होता है। निश्चित रूप से उड़ने की क्षमता और कुछ संरचनाओं के होने से परे, जिन्हें पंख कहा जाता है, पक्षियों और जेट के बीच बहुत कम समानताएं हैं। फिर भी वायुगतिकी के समान सिद्धांत उड़ने वाले जीवों और हवाई जहाजों दोनों में काम करते हैं।
अनुरूप सोच संबंधों और जुराव पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, ध्यान दें कि हम सामान्य रूप से तोरह में और विशेष रूप से लैव्य व्यवस्था में जो पढ़ रहे हैं वह प्रत्येक नए कानून या निर्देश के कारण को समझाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि मिश्रण में एक और लेकिन समान कानून या निर्देश जोड़ा जाता है और फिर एक और फिर और भी। इन सभी कानूनों और निर्देशों के बीच संबंध एक समग्र चित्र बनाता है जो अर्थ को स्थापित करता है। इसलिए यदि आप मेरे जैसे हैं और हम लैव्य व्यवस्था का अध्ययन करते समय खुद से पूछते हैं, हम सुअर का मांस क्यों नहीं खा सकते, वास्तव में इसका उत्तर बस इतना है, क्योंकि यह अन्य सभी कानूनों के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत के अनुरूप है। यही है कि नया नियम वह है जो अन्य सभी नियमों के साथ पूर्ण संबंध में रहने के उद्देश्य से है। इसलिए मूल उत्पत्ति पैटर्न व संदर्भ बन जाता है, जिसके अनुरूप बाद में आने वाली हर चीज को अनुरूप होना चाहिए। यीशु अक्सर एक खास तरह की सादृश्यात्मक विचार शैली में बात करते थे, जिसे दृष्टांत कहा जाता है। उनके कभी कभी हैरान करने वाले दृष्टांतों में आध्यात्मिक सिद्धांत और पैटर्न सन्निहित थे, जो मौजूद हैं और कभी नहीं बदलते। लेकिन उन्होंने स्थापित और समझे गए पैटर्न के सिद्धांतों को अन्य चीजों पर लागू करके अपनी बात कही, जो सतह पर समान नहीं लगती थी। वास्तव में कभी कभी असमानताएं इतनी बड़ी होती थीं कि लोगों को उनके सादृश्यों का अर्थ समझने में और अब भी मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि वे उस पैटर्न को नहीं पहचानते थे जो इन सभी को जोड़ता था। राई के दाने का स्वर्ग के राज्य से क्या लेना देना है? कोई क्यों चाहेगा कि वह राई के दाने को स्वर्ग के राज्य से जोड़े? क्यों कोई खेत के जानवरों, सुअरों को कीमती मोती फेंकेगा? तेल के दीपक को जलाए रखने के लिए तेल खत्म हो जाने का उनके लौटने से क्या संबंध है? इसका उत्तर लंबे समय से स्थापित आध्यात्मिक पैटर्न और सिद्धांतों में है। सादृश्यात्मक सोच के बारे में बात यह है कि इसमें पहले से मौजूद मूल पैटर्न होना चाहिए, जिसके आधार पर आगे बढ़ा जा सके और खुद को मॉडल बनाया जा सके। इसलिए बाइबल के पात्रों की सादृश्यात्मक सोच शैली में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कौन सा पैटर्न इस मौजूदा स्थिति के लिए सही और प्रासंगिक है। इसलिए ग्रीक शैली की सोच में खोज हमेशा क्यों की होती है, लेकिन इब्रानी शैली, बाइबल शैली की सोच में खोज हमेशा कौन सा की होती है, ये पहचानने पर कि कौन सा पैटर्न किसी विशेष विनियमन या परिस्थिति के अनुकूल है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सादृश्यात्मक सोच भी चीजों को सूक्ष्म जगत के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखती है। सूक्ष्म जगत का सीधा सा मतलब है कि यह अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, एक लघु ब्रह्मांड जो एक बड़े और अधिक विस्तृत ब्रह्मांड का मॉडल है। उदाहरण के लिए, एक परिवार एक समुदाय का एक सूक्ष्म जगत है, यानी एक परिवार लोगों का एक छोटा सा समूह है जो सिद्धांत और संरचना में लोगों के एक बड़े समूह के समान है, जिसे समुदाय कहा जाता है। अब जबकि हम समस्या की मूल बातें समझ चुके हैं, तो आइए व्यावहारिक रूप से देखें कि इसका हमारे लिए और तोरह के अध्ययन के लिए क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि इब्रानी एक ऐसी भाषा है जो अनुरूप सोच की संस्कृति को मूर्त रूप देती है। दूसरी ओर ग्रीक एक ऐसी भाषा है जो तर्क संगत तार्किक सोच की संस्कृति को मूर्त रूप देती है। इब्रानी एक पूरी तरह से अलग संस्कृति है, जिसमें इब्रानी लोगों की अनूठी अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए एक पूरी तरह से अनूठी भाषा है। और इब्रानी अवधारणाएं, जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, वे ईश्वर के दिमाग और उनके द्वारा उन्हें और केवल उन्हें तोरह और फिर बाद के शास्त्रों के रूप में दी गई जानकारी पर आधारित है। ग्रीक एक व्यापक और विविधतापूर्ण संस्कृति है, जिसकी एक अनूठी भाषा है, जिसे इसकी विशेष सांस्कृतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को संप्रेषित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ग्रीक संस्कृति मानव खोज, मानव दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नैतिकता और सत्य की खोज की मानव निर्मित प्रणालियों पर आधारित है। सोच और समस्या समाधान की एक ग्रीक प्रणाली कैसे? तर्क संगत तार्किक सोच पूरी तरह से विपरीत सोच प्रणाली से सत्य और अर्थ निकालती है। इब्रानी अवधारणाएं, जो केवल इब्रानी लोगों के दिमाग में मौजूद थीं, इब्रानी संस्कृति से पैदा हुईं और इब्रानी भाषा द्वारा व्यक्त की गईं, उन लोगों हमारे जैसे के दिमाग में कैसे संप्रेषित होती हैं जो एक ग्रीक संस्कृति में रहते हैं, जिसमें ये समान अवधारणाएं नहीं हैं, न ही उन्हें वर्णित करने और संप्रेषित करने के लिए उनकी अपनी भाषा में शब्दावली है? उत्तर है, बहुत अच्छी तरह से नहीं। अब क्या इब्रानी किसी तरह से अच्छी है और ग्रीक किसी तरह से बुरी? क्या इब्रानी ईश्वरीय है और ग्रीक अधर्मी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने सभी भाषाएं बनाई हैं। वास्तव में उन्होंने बाबेल के टॉवर पर मानव जाति पर भाषा के विभिन्न रूपर्वों को पूरी तरह से थोपा, और जैसा कि डॉ रॉबर्ट मैकगी ने मुझे बताया, ईश्वर जानता था और उसके पास ग्रीक भाषा में सरकों पर चलने की अनुमति देने का अच्छा कारण था, भले ही यह इब्रानी अवधारणाओं को ठीक से समझाने में अपूर्ण हो। तो तोरह क्लास में हमारा काम और मेरा जुनून यह पता लगाना है कि बाइबल को हमारी इन निराशाजनक तर्कसंगत
तार्किक आंखों से कैसे देखा जाए और एक ऐसा अर्थ निकाला जाए जो अनुरूप विचार, भाषा और संस्कृति में तैयार किया गया था। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह काफी हद तक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन झूठे सिद्धांतों और परंपराओं को छोड़ने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जो तर्कसंगत तार्किक सोच वाले लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इब्रानियों और इसराइल का तिरस्कार किया था, वे लोग जो सहन नहीं कर सकते थे। इब्रानी शास्त्रों और नए नियम को उन लोगों की अलग मानसिकता से समझने और समझने की कोशिश करना जिन्होंने इसे लिखा था। इसमें यहूदी संस्कृति और यहूदी विचार शैली को मान्य करना शामिल था, ऐसा कुछ जो दूसरी शताब्दी के मध्य से अंत तक गैर यहूदी नियंत्रित चर्च के लिए अकल्पनीय था, जो यहूदी धर्म के किसी भी रूप को बरकरार नहीं रखना चाहता था।
हम अगले सप्ताह इसका समापन करेंगे और लैव्य व्यवस्था अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे।